पृष्ठ संख्या 171, निराला, जीवन यात्रा। 29 फरवरी 1899, 1899 से 1918, महिषादल में जन्म। सूर्य कुमार नामकरण, मंगली कुंडली में दो विवाह, गौरवपूर्ण स्वरूप, स्वभाव से खिलाड़ी, नटखट और हठी। 8 वर्ष की आयु में गढ़ा गोला में यज्ञोपवीत संस्कार। 1907 में महिषादल स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रवेश। उन्मुक्त प्रकृति के होने के कारण पिता से दंडित होते। एक दबा हुआ असंतोष राजा के प्रति और पिता के लिए भी। तंत्र विद्या के चमत्कार में दिलचस्पी। 12 वर्ष की आयु में 1911 में डलमऊ में मनोहरा देवी से विवाह। विवाह के बाद बहु मायके में। सूर्य कुमार महिषादल में नाटक, खेलकूद और व्यायाम में अभिरुचि। पद्माकर के चित्रमय श्रृंगार वर्णन से विशेष प्रभावित। संस्कृत काव्य विशेषकर विद्या सुंदर और चौर पंचासिका अति प्रिय। प्रायः 2 वर्ष बाद गौने के लिए डलमऊ गए। महुए के पेड़ नीचे झोपड़े में प्रथम मिलन। गवही के सिलसिले में ससुराल में मेहमानी और वहीं पर पथवारी दिन उर्फ कुल्ली भाट कथानायक से भेंट। इत्र फुलेल से अत्यधिक लगाव। मनोहरा देवी से तुलसी की वंदना। श्री रामचंद्र की बाल भजमन सुनकर साहित्य और संगीत की ओर रुझान। कुछ बनने का संकल्प लिया। महिषादल पत्नी के साथ लौटे। एंट्रेंस की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिता द्वारा पत्नी का निष्कासन। डलमऊ आए। पिता पुनः दोनों को लिवा ले गए। मांसाहार के प्रश्न पर पत्नी से मतभेद। मनोहरा देवी डलमऊ चली गईं। मायके में ही पुत्र रामकृष्ण का 1914 में जन्म। महिषादल में सूर्य कुमार व्यायाम, खेलकूद, सैर सपाटे और स्वेच्छानुसार अध्ययन में रत। 1916 में जूही की कली की रचना। 1917 में पुत्री सरोज का जन्म। इसी वर्ष पिता राम सहाय का देहावसान। राजा सती कुमार गर्ग ने सूर्य कुमार को चिट्ठी पत्री तहसील वसूली कचहरी अदालत से संबंधित काम के लिए नौकर रख लिया। पत्नी की बीमारी का तार डलमऊ पहुँचे किंतु तब तक पत्नी की चिंता राख हो चुकी थी। 1918 4 वर्ष के रामकृष्ण और साल भर की सरोज को डलमऊ छोड़कर गढ़ा कोला गए। बड़े भाई बदलू भाभी, उनकी छोटी बच्ची और काका रामलाल की मृत्यु। महिषादल लौटे। विवेकानंद के गुरु भाई और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी प्रेमानंद का महिषादल में आगमन। विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ी और रामकृष्ण परमहंस के बारे में अध्ययन किया। रियासत के अत्याचार से विक्षुब्ध होकर राजनीति की ओर झुकाव। बंगला पत्रों से रूसी क्रांति और नए समाज की रचना का ज्ञान। राष्ट्रीय कार्यों में योगदान। पृष्ठ संख्या 172। 1920 में राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर हिंदी बंगला की बहस के फलस्वरूप दोनों के साहित्य का गहरा अध्ययन। बंगाली मित्रों से हिंदी के पक्ष को लेकर वाग्युद्ध। बंग भाषा का उच्चारण लेख सरस्वती में प्रकाशित। बंधुमय अमल कमल देशभक्तपूर्ण गीत की रचना। रियासत के दुष्चक्र से ऊबकर और आत्म प्रतिष्ठा के प्रश्न पर नौकरी से त्यागपत्र। समन्वय में कार्य करने की स्वीकृति। 1921 में गर्मियों में गढ़ा कोला आए महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रथम साक्षात्कार। 1922 रविंद्र का प्रभाव। भूतवाला के प्रकाशन का आरंभ। अनामिका प्रथम संस्करण का प्रकाशन। 1924 साहित्य सम्मेलन दिल्ली से असंतुष्ट लौटे। अनामिका की आलोचना के प्रश्न पर महादेव प्रसाद सेठ से मतभेद। मतवाला से त्यागपत्र। गढ़ा कोला में भूमि संबंधी कागजात ठीक कराए। 1925 से 27 उग्र से नोकझोंक। काशी में उग्र के षड्यंत्र से रोगग्रस्त। कुछ दिन प्रसाद के यहाँ रहे, फिर विनोद शंकर व्यास के यहाँ और फिर डलमऊ आए। पंत और पल्लव का प्रकाशन। 1928 लखनऊ में सुधा से संबद्ध गोविंद दास की पदावली का अनुवाद। गढ़ा कोला में उग्र की प्रतिस्पर्धा में गद्य लेखन लेख लिखे। 1929 परिमल का प्रकाशन। 1930 कलकत्ता सम्मेलन में गए। सरोज का विवाह, अप्सरा का प्रकाशन। 1931-32 पंत से पद्यात्मक पत्राचार। रंगीला के प्रवेशांक का संपादन। चंद्रवली पांडे तथा बनासीदास चतुर्वेदी से द्वंद्व। 1930 महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन इलाहाबाद पर सुधा में भावुकतापूर्ण टिप्पणी लिखी। लेखन में सर्वतोमुखी गतिशीलता। 1934 सुधा में देवी का प्रकाशन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा निराला पर लेख, प्रेमचंद से द्वंद्व रामविलास शर्मा का परिमल पर प्रशंसात्मक लेख, राजा साहब को ठेंगा दिखाया, कहानी में महिषादल के राजा पर व्यंग्य। 1935 सरोज का देहांत, सरोज स्मृति की रचना, जानकी वल्लभ शास्त्री ने निराला पर कविता लिखी, माधुरी में मेरे गीत और कला लेखमाला का आरंभ, तुलसीदास का सुधा के 3 अंकों में प्रकाशन। 1936 सुधा में सरोज स्मृति और भारत में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन, निरुपमा और गीतिका का प्रकाशन, भुवनेश्वर द्वारा निराला पर लेख, प्रगतिशील लेखकों से संपर्क। 1937 कामायनी के प्रकाशन पर सुधा में समालोचना लिखी। 1938 तुलसीदास और अनामिका का प्रकाशन, अस्वस्थ और एकाकी प्रायः लखनऊ में, साहित्य सम्मेलन फैजाबाद से असंतुष्ट लौटे। रामकृष्ण का विवाह जिसका निमंत्रण अमृतसर नगर के चकल्लस में छपा, जानकी वल्लभ शास्त्री तथा रामविलास शर्मा द्वारा निराला पर लेख, 1939 पंत के रूपाव में अनामिका के कवि के प्रति कविता लिखी, रूपाव में ही बिल्लेसुर बकरिया अपूर्ण और कुल्ली भाट का प्रकाशन, वाराणसी के सम्मेलन में आत्मगौरव की तुष्टि, इलाहाबाद लौटे, जवाहरलाल नेहरू से भेंट तथा भाषा को लेकर बातचीत, कलकत्ता में अभिनंदन चित्रकूट यात्रा, 1940 काश्मीर सोशलिस्ट लखनऊ की ओर से दिए गए अभिनंदन पत्र में निराला को नवयुग का अग्रदूत कहा गया, प्रसाद परिषद के अधिवेशन में अध्यक्षता, प्रबंध प्रतिमा का पृष्ठ संख्या 173 प्रकाशन, पुरानी आस्थाएं टूटने लगी, व्यंग्य खीज और आक्रोश की प्रधानता। 1941 कुकुरमुत्ता की आरंभिक 150 पंक्तियों का हंस में प्रकाशन, बहू की मृत्यु, समाजवाद का अध्ययन, लाहौर में कवि सम्मेलन की अध्यक्षता, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु पर श्रद्धांजलि, खजोहरा का हंस में प्रकाशन, 1942 कुकुरमुत्ता और बिल्लेसुर बकरिया का प्रकाशन, करवी में रुग्ण हुए इलाचंद्र जोशी के साथ कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया, अधिकतर अस्वस्थ और अव्यवस्थित। 1943 से 45 अड़िमा का प्रकाशन, 3 महीने बीमार, क्रमशः वाराणसी, उन्नाव और इलाहाबाद में रहे, जिगर और फिराक प्रतिस्पर्धा, गजलें लिखी, असंतोष चरम सीमा पर, उग्रतर विक्षिप्तता, डलमऊ गए, कुकुरमुत्ता का संशोधन। 1946 बेला और नए पत्ते का प्रकाशन, प्रयाग से गढ़ा कोला फिर डलमऊ। 1947 वाराणसी में नंद दुलारे वाजपेयी के आयोजन में निराला की स्वर्ण जयंती, डलमऊ बीच बीच में जाना, 15 अगस्त के बाद विक्षेप में उग्रता, सितंबर में नरोत्तम नागर से निराला का इंटरव्यू लेकर हंस में लेख लिखा, अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, राजनीतिज्ञों से प्रतिस्पर्धा। 1948 से 49 इलाहाबाद आए, कुकुरमुत्ता का पुनः संशोधन, कुछ समय तक वाराणसी में एकांतवास, सन्यासी के वेशभूषा, अपरा पुरस्कृत हुई, किंतु अधिक अर्थापेक्षा के कारण निराला को विशेष प्रसन्नता नहीं, साहित्यकार संसद में निवास। 1950 से 52 अर्चना का प्रकाशन, विक्षिप्त मनः स्थिति, गेरू के ढेले कूट कर सन्यासी के वस्त्र रंगे थे, मनगढ़ंत आत्म प्रशस्तियाँ, अंग्रेजी से अत्यधिक लगाव। 1953 कलकत्ते में बरुधा द्वारा अभिनंदन का आयोजन, अपार भीड़, अभिनंदन ग्रंथ निकला, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल मैनपुरी के अधिवेशन के महादेवी के साथ सम्मिलित हुए, कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की और अंग्रेजी में वक्तव्य देकर शिवाजी का पत्र कविता पढ़ी, राज्यपाल का माँ मुंशी उनसे मिले। 1954 अस्वस्थता, मन से भी विषण, दायां हाथ बेकार जैसा, दाएं पैर की गांठों में दर्द, अर्चना पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 का पुरस्कार, निराला के लिए 100 रुपये प्रतिमास की सहायता स्वीकृत, निराला को इससे आत्महीनता का अनुभव, सारा कुछ एब्सर्ड लगा, वे अपना पावना रियलिटी आदि पाना चाहते थे, जिलाधीश के द्वारा सीधे उन्हें 120 रुपये दिए जाने लगे, रामविलास शर्मा ने उनसे मिलकर जनयुग में वक्तव्य दिया, मानसिक अस्वस्थता, 1955 से 58 मानसिक अस्वस्थता यथावत, पारा निकोब मिले, रूसी में निराला की कविताओं का प्रकाशन, 1959 निराला का वृत्तचित्र बनाने का आयोजन, स्टूडियो में व्यवस्थित रूप से काव्य पाठ, गीतिका की रचनाओं के प्रति विशेष लगाव, महिषादल और मनोहरा देवी का पुनः पुनः स्मरण, 1960 निराला के उद्घोषित जन्मदिन, बसंत पंचमी पर समारोह की तैयारियां, इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, सर्वत्र वाराणसी गए। दिल्ली के समारोह में बनारसी दास चतुर्वेदी अध्यक्ष द्वारा निराला के साहित्यिक महत्व की स्वीकृति, इलाहाबाद में पंत महादेवी अमृतलाल नागर, पृष्ठ संख्या 174, भगवती चरण वर्मा तथा गंगा प्रसाद पांडे के हस्ताक्षर से पंचनामा तैयार हुआ, जिसमें निराला को मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त तथा रामकृष्ण को उनका एकमात्र वारिस बताया गया और निराला की पौत्री के विवाह कार्य के लिए रामकृष्ण को धनराशि देने की सिफारिश की गई। जलोदर, यकृत, विकार तथा हृदय के पास रक्त संचार में अवरोध के कारण सारे शरीर में शोथ, 1961 जीवन का अंतिम वर्ष, पिछले 12 वर्षों से कमला शंकर सिंह के घर पर रह रहे थे। शारीरिक व्याधियां उग्रतम, पंत देखने आए, निराला ने प्रसन्न होकर कहा, हम रहे न रहे तुम सलामत रहो 1000 बरस। संपूर्णानंद, राम मनोहर लोहिया, कमलापति त्रिपाठी उन्हें देखने आए, राष्ट्रपति प्रयाग आए, दारागंज की ओर रुक किए बिना वापस चले आए। केदारनाथ अग्रवाल ने उन्हें देखकर आशाजनक रिपोर्ट दी, हिंदी का अपराजेय कवि अच्छा हो रहा है, पुनः पाताल से सूर्य की तरह उभर रहा है। निराला मृत्यु से लड़ रहे थे, यद्यपि परिणाम का पूर्वाभास उन्हें था। कविता लिखी, पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इन दिनों हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, वैश्वाणी सबका प्रयोग करते थे। मानसिक अस्वस्थता का एक नया लक्षण उभरा। उन्हें संदेह होने लगा था कि लोग उन्हें गंदी चीजें खिलाते हैं, मैला घी, जहरीला सेब आदि। मांसाहार पर प्रतिबंध था। 13 अक्टूबर को कुर्सी पर बैठकर स्वयं 4 घंटे मांस पकाया, दूसरों को खिलाया, स्वयं भी खाया। रात को कष्ट बढ़ा, वर्षा के कारण डॉक्टर रात में ना आ सके। सवेरे मारफिया का इंजेक्शन देकर अस्पताल ले जाने का उपक्रम, किंतु निराला तंद्रा का दबाव बलात् हटाकर स्ट्रेचर पर उठ बैठे और अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। वे शांति से मरना चाहते थे। शाम को राम प्रताप त्रिपाठी और ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल मिलने आए। निराला खाट पर उठकर बैठ गए, निर्मल के हाथ में तम्बाकू दी, बनने पर स्वयं भी खाई, ब्रश से दांत साफ किए, अतिथियों को कहकर चाय पिलाई। दूसरे दिन फिर कष्ट, हार्निया की पीड़ा, नेत्रों की ज्योति जाती रही, किंतु उनके मुख से न कराह निकली थी, न हाय, न चीख, न रुदन, न आंखों में आंसू। अस्पताल ले चलने की बात हुई, किंतु डॉक्टरों ने अब इसे व्यर्थ बताया। किडनी का फंक्शन बंद हो गया था। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए 5 आदमियों ने उन्हें दबाया, वे विरोध कर रहे थे। इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया, नाक में ऑक्सीजन की नली, प्रातःकालीन भूमि पर लिटाया गया। चारों ओर रामकृष्ण, कमला शंकर सिंह, उनकी पत्नी, इलाहाबाद के छोटे बड़े साहित्यकार, बाहर जन साधारण की भीड़, वेद मंत्र, गीता पाठ, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, सब कुछ शास्त्रानुसार। कंठ में तुलसी गंगा जल डाला गया। जय गोपाल मिश्र ने राम की शक्ति पूजा पढ़ना शुरू किया। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखकर अमर रह गया राम, रावण का अपराजेय समर। 15 अक्टूबर को प्रातःकाल जीवन लीला का स्मरण। मुख पर कष्ट या विकारों की भंगिता नहीं थी और न कोई अंग ही टेढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे जीवन भर संघर्षों और कठिनाइयों से जूझने वाले उस महान साहसी एवं अदम्य योद्धा ने मृत्यु का स्वयं ही वरण करके चिर शांति की गोद में अखंड निद्रा ले ली है।